الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة کی ہم مطالعہ کر رہے تھے اور اس کی 282 نمبر آیت تک ہم نے کر لیا تھا. آج ہم 283 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ قرض کا معاملہ چل رہا تھا جو سود کی بحث سے پیدا ہو گیا تھا, کیونکہ سود کا معاملہ قرض کے ساتھ ہے. اس وجہ سے پھر لازمی طور پر قرض کے بارے میں بھی بات کرنی پڑی. تو اس کے بعد اب قرض کی ایک ایسی شکل جس میں لکھنے کا موقع نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا کہ جب بھی قرض لوگے تو اس کو, یعنی ایک وقت تک کے لیے, تو اس کو لکھ لوگے, اور تاکہ یہ شہادت کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور تمہارے لیے نقصان کا باعث بھی نہ ہو. آگے فرمایا, وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوزًا, کہ اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو پھر قبضے میں کوئی رہن کے طور پر چیز دے دی جائے گی, گروی کے طور پر کوئی چیز دے دی جائے گی. اب ظاہر ہے کہ جو آدمی کسی سفر پہ ہے, کسی ایسے شہر میں ہے جہاں واقف لوگ موجود نہیں ہیں اور لکھنے والا بھی موجود نہیں ہے, تو قرض اب لینا ہے تو کیسے لیا جائے گا؟ تو ضمانت کے طور پر کوئی چیز اس کو دے دی جائے گی. تو رہان المقبوضہ کا مطلب ہے کہ ضمانت کے طور پر کوئی چیز دے دی جائے گی. مثلا آپ نے قرض لیا اور اپنی گھڑی رکھ دی, یا کوئی اور چیز قیمتی رکھ دی, تلوار رکھ دی, کچھ رکھ دیا. یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا. تو یہ رہان المقبوضہ ہے, یعنی ضمانت کے طور پر کوئی چیز اس کے قبضے میں دے دی جائے گی. فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور اگر پھر ایسی صورت ہو جائے کہ ایک دوسرے پر بھروسہ پیدا ہو جائے, مثلا جس نے قرض دینا تھا اس کو تسلی ہو کہ یہ آدمی جس کو میں نے قرض دیا ہے یہ میرے قرض واپس کر دے گا, تو فرمایا کہ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ, تو جس کو وہ گروی میں چیز رکھی گئی ہے وہ پھر اپنی امانت اس کو واپس کر دے جس کو دی گئی ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ ایک عارضی اہتمام ہے. جو ہمارے ملک میں گروی کا کاروبار چلتا ہے وہ کسی اعتبار سے قرآن سے نکلا ہوا نہیں ہے. یہ صرف اس صورت میں ہے کہ لکھنے کی صورت نہیں ہے, تو اس لیے آدمی کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ کوئی چیز رکھ کے قبضے میں دے کر, ضمانت کے طور پر کوئی چیز رکھ کر اس کے اوپر قرض لے سکتا ہے. لیکن وہیں پر اگر یہ صورت پیدا ہو جائے, یعنی اسی شہر میں جہاں پہ اس کا کوئی لکھنے والا نہیں ہے یا واقف نہیں ہے, تو وہیں پر اگر یہ صورت پیدا ہو جائے کہ اس کو اطمینان ہو جائے قرض دینے والے کو کہ میرا قرض جو ہے اس کو کچھ نہیں ہوگا, مل جائے گا واپس, تو وہ جو گروی میں چیز رکھی ہوئی ہے وہ واپس کر دے گا. تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اپنے شہر میں جہاں لکھنے کا انتظام موجود ہو کوئی قرض گروی کے اوپر نہیں لیا جا سکتا, نہ دیا جا سکتا. قرآن سے یہی بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ صرف ضمانت کے طور پر تحریر کا متبادل ہے, یعنی وہ جو تحریر لکھنی تھی قرض دیتے ہوئے اس کا متبادل ہے, نہ کہ یہ کوئی بزنس یا کاروبار کی کوئی چیز ہے. یہ واضح ہوتا ہے پورے سیاق و سباق سے کہ لکھنے والا کاتب موجود نہیں ہے تو رہان المقبوضہ ہوگی, اس کے علاوہ کسی صورت میں گروی کا مال نہیں رکھا جا سکتا. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, تو یہ واپس کرنے والا اللہ سے ڈرے اپنے رب سے. وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ, اور اس معاملے میں بھی گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے, نہ قرض کے معاملے میں نہ کسی اس طرح کی چیز میں. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ, تو جو اس گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہوگا. یہ بہت دلچسپ بات ہے جو اسلامی تصور تقویٰ کو بالکل واضح کر دیتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسی چیز کا فقدان ہو گیا. یعنی بندہ مومن کے لیے گناہ وہ گناہ ہے جو اس کا دل کرتا ہے. ظاہری طور پر اگر فتویٰ ٹھیک ہے لیکن دل اندر سے گناہ کر رہا ہے تو یہ آدمی مجرم ہے, خدا کی نگاہ میں گناہگار ہے. मिसाल के तौर पर मुझे ये तो पता है कि मैं पैसे जो ले रहा हूँ आपसे वो नाजायज़ हैं, लेकिन मैंने मौलवी साहब से फतवा ले लिया, तो मेरे ज़मीर की गवाही यह है कि वो नाजायज़ पैसे ले रहा हूँ, लेकिन ले मैं फतवे की रोशनी में रहा हूँ, मैंने फतवा ले लिया हुआ है कि गिरवी लेना ठीक है, मसलन गिरवी का केस जो चल रहा है। तो ये अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं, जो शहादत छुपाएगा हो सकता है उसने लिखे हुए के मुताबिक दी हो, दो लोगों ने मिलकर साजिश कर ली हो कि जो लिखी हुई है उसके मुताबिक गवाही दे देंगे, बस दे दी उसने, तो दुनिया के अतबार से तो सच्चा गवाह है क्योंकि लिखे हुए के मुताबिक उसकी गवाही है, लेकिन हकीकत में वो गुनाहगार हो गया है। तो ये फ़ाइन्नहु आसिमुन कल्बहु जो है ये बहुत अहम बात है, इसको पीछे रोज़े के कानून में भी हम पढ़ चुके हैं कि कुरान ने कहा था कि तख्तानूना अनफुसकुम, तुम अपने ज़मीर से ख़यानत कर रहे हो। सूरह अल-क़यामा में जाकर यही कहा है कि लियफ़जुरा अमामा, वो अपने सामने इशारत करता है, यानी जान रहा होता है कि ये गलत बात, जान रहा होता है कि ये मैंने डंडी मार रहा हूँ या बेईमानी कर रहा हूँ या मैं हकीकत कुछ है बता कुछ रहा हूँ, तो ये आदमी गुनाहगार है। ये जो सूरत हाल है कि इसको कुरान के दूसरे अल्फाज में कहिए कि जानते बूझते अला इल्म ऐसा करे, और आगे जब हम सूरह अनाम में पहुँचेंगे तो वहाँ अल्लाह ताला ने एक और हुक्म दिया है कि जब ये लोग अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ा रहे हों तो वहाँ से उठ के आ जाया करो, और बाज़ औक़ात कहा कि अगर तुम बैठे रहे और जब याद आ जाए तो फिर फौरन उठ जाया करो, जब याद आ जाए कि ओहो अल्लाह ने मुझे रोका था कि इस तरह की मजलिस में नहीं बैठना, तो वहाँ पर भी ज़िक्र का लफ्ज़ बोला गया है, तो याद आ जाए, ज़मीर गवाही दे रहा हो, दिल आगाह हो, मेरे अंदर किसे पूरा वजूद गवाही दे रहा हो कि ये बात गलत है लेकिन फतवे के मुताबिक ठीक हो, तो आप गुनाहगार हैं, ये वाज रहना चाहिए, यही असल दीन की हकीकत है, इसके सिवा कुछ नहीं है। इसी बात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि बंदे का जो खुदा के बारे में जन होगा उसी के मुताबिक उसको पूछा जाएगा, उसकी राय अपनी क्या होगी। अगर उसकी अपनी राय यह है कि ये गलत बात है और फतवा लेकर उसने उसको दुरुस्त करवा लिया है तो ये बात ठीक नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है कि हो सकता है कि तुम मेरे पास आओ और अपनी चर्ब ज़ुबानी से अपने हक में फ़ैसला ले जाओ, अपनी चर्ब ज़ुबानी से अपने हक में फ़ैसला ले जाओ, तो ये ना समझना कि तुमने हक पा लिया बल्कि तुम अपने पेट में आग भरोगे जो कुछ लेकर जाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तरफ से आने वाला फ़ैसला जो चर्ब ज़ुबानी से आपने कायल कर लिया नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो भी आपके हक में नहीं जाएगा। तो फतवा किसी का भी हो अगर आपकी ज़मीर के ख़िलाफ़ है तो आप गुनाहगार हैं। तो आसिमुन कल्बहु बहुत अहम असूल है दीन का, इसको हमेशा वाज रहना चाहिए कि मैंने दिल से जिन चीज़ों को जानता हूँ गलत हैं, मेरी राय जिनके बारे में है कि वो गलत हैं, मेरे तसव्वुरात के मुताबिक वो गलत है, उसको नहीं किया जाएगा। हाँ, ये सूरत हो सकती है कि राय जो मेरे दिल में थी या मेरे दिल का जो ख्याल था वो मैं वाक़ईतन दिली तौर पर कायल हो गया हूँ कि वो गलत था, अब यही जो फतवा आया है उसके मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है ये बात, तो अब एक और केस है, अब ये गुनाहगार नहीं हुआ, लेकिन जिसमें आपका इत्मीनान दूसरी तरफ हो और फतवा दूसरी तरफ हो तो ये गुनाह की बात है। आलम दीन का कोई फतवा आपके ज़मीर की गवाही के बराबर नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। तो इसलिए जो ज़मीर की ये आवाज़ है, और ये बात भी याद रखिए कि ज़मीर की आवाज़ गलत राय पर हो तब भी, आप अगर ज़मीर की आवाज़ के ख़िलाफ़ चल रहे हैं तो आप गुनाहगार हैं, सिवाय इसके कि आपका कल्बी इत्मीनान हो जाए कि अब जो मेरी ताज़ा राय है वो दुरुस्त है, पहली जो राय थी वो गलत हो गई है। तो इसलिए गवाही छुपानी हो, किसी के पैसे मारे हों, किसी का साथ देना हो, तो इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए कि आपका दिल गुनाहगार हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिसने गवाही छुपाई तो उसका दिल गुनाहगार होगा, ये बहुत अहम असूल है, पूरे दीन का पूरे ईमान का मदार इसी पर है। अगर हमारे दिल गुनाह करना छोड़ दें तो तकवा बहाल हो जाएगा, ईमान मजबूत हो जाएगा। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बात को, इस तसव्वुर को समझा जाए कि फ़ैन नहु आसिमुन कल्बहु। कि जो गवाही छुपाएगा तो हो सकता है उसने लिखे हुए गलत लिखे हुए के मुताबिक गवाही दी हो, लेकिन चूँकि वो गुनाह गवाही को छुपा रहा है तो इसलिए उसका दिल गुनाहगार होगा। वल्लाहु, पीछे जो बात थी उसमें भी याद रखिए कि फ़ैन्नहु फ़सूकुन बिकुम के अल्फाज आए थे कि जो कातिब को, लिखने वाले को, गवाहों को नुकसान पहुँचाएगा या जो पैसा मार लेगा जिसने कर्ज दिया था उसका, या कर्ज़ देने वाले के ऊपर ज़्यादा बोझ डाल देगा, दिए 10 रुपये थे वापस 15 रुपये ले रहा है बेईमानी के ज़रिए से, तो ये जो कुछ भी होगा ये फसूकुन बिकुम है, यानी तुम्हारे ऊपर फिस्क चस्पा हो जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर उसको दूसरे असलू में बयान किया, फ़ैन्नहु आसिमुन कल्बहु, तो उसका दिल गुनाहगार हो जाएगा। तो ज़मीर की गवाही, ज़मीर को गुनाहगार नहीं होना चाहिए, दिल को गुनाहगार नहीं होना चाहिए, और हमारे अंदर की राय के ख़िलाफ़ हमें नहीं चलना चाहिए। जिस राय पर हमारा कल्बी ज़हनी इत्मीनान हो उसी राय के मुताबिक चलना चाहिए। हाँ, बाज़ुकात हम भी जब राय तब्दील करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं कि 3 दौर गुज़रते हैं आमतौर से। एक, अपनी राय के गलती का एहसास होता है, फिर उसके ऊपर तरद्दुद रहता है कुछ अर्से तक, अच्छा ये बात यूँ हो सकती है, यूँ हो सकती है, और फिर हमारा इत्मीनान नई राय पर हो जाता है। लेकिन तरद्दुद में भी ठीक है, लेकिन पहले दौर में जब आदमी को अपनी राय ठीक लग रही हो, गलती ना लग रही हो, उस मौके पर ऐसी कोई सूरत नहीं है कि आदमी अपने ज़मीर अपनी राय के ख़िलाफ़ अमल करें। वल्लाहु बिमा तअमलूना आलिम, फरमाया कि और अल्लाह ताला जो हैं वो जो कुछ तुम करते हो उससे बाखबर। अलीम का लफ्ज़ बड़ा बरमहल इस्तेमाल हुआ है क्योंकि अलीम दिलों के हालात को भी जानने के लिए दुरुस्त है, ज़ाहरी हालात को जानने के लिए भी दुरुस्त है, गुनाहों के जो अमली तौर पर हों उनके लिए भी, जो ख्याली तौर पर हों उनके लिए भी। अलीम का लफ्ज़ सारे जहतों को कवर करता है। तो फरमाया कि जो कुछ तुम करते हो दिल के अंदर, ख्यालात के अंदर, अपने अमल में, सबको अल्लाह ताला जानता है। जो नीयतें, जो इरादे, जो ख्यालात दिल में हैं उनको भी अल्लाह ताला जानते हैं, और जो तुम इकदामात करते हो उनको भी अल्लाह ताला जानते हैं। तो यहाँ पर जो बहस थी कर्ज की, और फिर यानी जो रिबा से, सूद से बात शुरू हुई थी, फिर कर्ज़ के मज़मून पर चली गई थी, और अब कर्ज़ ही के हवाले से गिरवी रखने का जो केस था कि किस तरह अगर किसी जगह कातिब मौजूद ना हो तो किस तरह से हमें कर्ज़ लेने का मामला करना है। आगे फरमाया कि यहाँ पर एक तरह से अहकाम जो सूरह अल बकरा में शुरू हुए थे वो मुकम्मल हो गए हैं, और फिर उसी हकीकतों की बात शुरू हो गई है जिसके लिए कुरान मजीद उतरा है। لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اگر تم چھپاؤ گے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرو گے یا اس کو چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ तुम्हारा उसी पर हिसाब करेगा और उन चीज़ों को माफ़ कर देगा, उसको माफ़ कर देगा जिसको चाहेगा, और जिसको चाहेगा अजाब देगा। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ज़मीन व आसमान में जो कुछ है अल्लाह का है, ये खुदा के कंट्रोल, कुदरत, उसकी हाकमियत, उसकी बादशाही को बयान करता है। तो ये फितरी सी बात है कि जिसके पास बादशाहत होती है वही हमारा हिसाब किताब कर सकता है। दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों को जो हुकूमत देते हैं तो उसमें भी इसी चीज़ का मुजाहरा होता है कि जिसके पास इख्तियार होता है वो हमें, यानी चौक में खड़े हुए एक मैट्रिक पास कांस्टेबल, मैट्रिक पास मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, कोई तोहीन की चीज़ नहीं है, मैट्रिक पास तालिबे इल्म के कांस्टेबल का मैं चालान नहीं कर सकता। हो सकता है कि मैं चीफ जस्टिस लगा हुआ हूँ, लेकिन वो मेरा कर सकता क्योंकि उसका इख्तियार। तो इख्तियार जिसके पास होता है वही सजा दे सकता है, वही पकड़ सकता है, वही गिरफ्त कर सकता है। तो जिसके पास पूरी कायनात की बादशाहत है, असल इख्तियार उसी के पास है, तो असल में हिसाब लेने वाला वही है। उसको यहाँ बयान किया है कि देखो तुमने अल्लाह से डरना है, अल्लाह से डरना है, और अपने दिलों को गुनाह वाला, गुनाह आलूदा नहीं करना है, और याद रखो कि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है और तमाम चीज़ों पे उसी की बादशाहत है। आगे फरमाया कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है वो तुम जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह ताला उसका हिसाब करेगा। तो अब जो ऊपर बात थी आसिमुन कल्बहू में, उसको मज़ीद वाज़ह कर दिया है कि देखो ये ख्याल ना करना कि दिल के अंदर की नीयतें तो अल्लाह ताला नहीं जानता, नहीं, वो सब कुछ जानता है, इसलिए छुपाओ या जाहिर करो हर एक का वो हिसाब लेगा। तो अपनी जो गवाहियाँ तुमने देनी है, जो मामलात करने हैं, जो कर्ज लेन देन करना है, जो सौदा बेचना है, जो कुछ भी तुमने करना है, उसमें जो कुछ तुम जाहिर करोगे उसको भी अल्लाह ताला जानते हैं, उस पर भी हिसाब होगा, और जो कुछ तुम छुपाओगे उस पर भी हिसाब होगा। इसमें हो सकता है आप लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा था कि जो दिल में ख्याल पैदा होगा उसके ऊपर सज़ा नहीं होगी, बुराई का अगर ख्याल पैदा होगा, ये उससे अगली स्टेज की बात हो रही है। वो तो सिर्फ़ एक वसवसे के अंदाज़ में, ख्याल के अंदाज़ में दिल में बात पैदा हुई और आपने कोई अमल नहीं किया, ये उसकी बात नहीं हो रही है। ये इस बात पे अल्लाह ताला तंबीह कर रहे हैं कि मैंने गवाही छुपाई थी, मुझे असल गवाही का पता था, लेकिन हालात देखकर कि मुझे कोई झूठा नहीं समझेगा, मैंने दूसरी गवाही दे दी, हकीकत के ख़िलाफ़ गवाही दे दी। तब जो अंदर मैंने छुपाया वो तो अल्लाह ताला जानते हैं। तो जो गुनाह मैंने इस तरह से किए होंगे कि बज़ाहिर दुनिया के लिए वो नेकी है, दुनिया के लिए वो गुनाह नहीं है, लोगों को यही लग रहा है कि मैंने सच बोला है, लोगों को यही लग रहा है कि मैंने बिल्कुल सही बात कही है, लोगों को यही लग रहा है कि मैंने सौदा सही तोला है, तो ये ज़ाहिर हो गया। लेकिन अंदर से लोग जो मैं बेईमानी कर रहा था, मैंने तोलने का कोई तरीका ऐसा निकाला हुआ था कि जिसको पता ही नहीं चल सकता, बल्कि मैं तो तराजू नीचा रख के सौदा देता था, सारी दुनिया कहती बड़ा अच्छा दुकानदार है ये, तो तराजू इसका जरा झुका हुआ होता है, तो लेकिन अंदर से मैंने कोई चीज़ छुपा रखी थी, बेईमानी में कुछ और तरीके से कर रहा था जो ज़ाहिर नहीं हो रही थी। तो फरमाया कि अगर तुम ज़ाहिर करोगे तो उस पर भी अल्लाह ताला हिसाब करेगा, और जो कुछ तुम छुपाओगे तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उस पर भी हिसाब करेगा। तो हमारी नीयतें, हमारे इरादे, हमारी साजिशें, हमारी प्लानिंग्स, हमारे प्रोग्राम, हमारे मनफी किस्म के हथकंडे, जुमला हम मोहब्बत का बोलेंगे मुराद अगवा करना होगा, जुमला हम मोहब्बत का बोलेंगे गलत रास्ते पर चलाना होगा, ये सारी बातें हम अल्लाह ताला को मालूम होती हैं। तो जब हम सच बोल रहे हों या झूठ बोल रहे हों, और सच के पीछे का कोई छुपी हुई झूठ की बात वो भी अल्लाह ताला जानते हैं, और झूठ के पीछे छुपी हुई सच्ची बात उसको भी अल्लाह ताला जानते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला उस पर हमारी पकड़ करेगा, खा जो हमारे दिल में है, खा उसको ज़ाहिर कर दें खा उसको छुपा दें, उस पर लाजमन हिसाब होगा। तो अब आसिमुन कल्बहू को अल्लाह ताला ने मज़ीद वाज़े कर दिया कि ये बात याद रखो कि जो भी आदमी दिल का गुनाहगार होता है, यानी दिल उसका बता रहा था कि काम गलत है लेकिन उसने कर दिया, दुनिया के लिए वो ठीक काम था लेकिन उसका दिल बता रहा था कि वो गलत है, तो वो गुनाहगार हो गया। तो वो गुनाहगार हो गया तो क्यों गुनाहगार हो गया, ये याद रखना चाहिए कि अगर हमारे दिल की ये बात दिल में रहे, यानी मुझे पता है सच्ची बात क्या थी, मैंने झूठी गवाही दे दी, किसी और को नहीं पता। बाद का कई केसेस ऐसे होते हैं, मेरे सामने भी आते रहते हैं, कि वाक़यात जिनके सामने हुए थे उसमें में से एक गवाह मौजूद है, वाक़यात जिनके साथ हुए थे फौत हो चुके हैं, जो सामने जिनके सामने गवाही देनी है उन्होंने वो वाक़यात देखा नहीं हुआ, अब इसकी गवाही पर ही हकीकत खुलनी है। तो अब अगर ये रिश्वत लेकर गवाही बदल दें तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसने दिली तौर पर गुनाह किया है, अंदर से वो गुनाहगार है। तो फरमाया कि मैं ऐसे लोगों को अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो मगफरत कर देगा, चाहेगा तो सजा देगा। ये जो चाहेगा है इसको पूरे कुरान मजीद में असूली तौर पर समझ लेना चाहिए, ये खुदा का शाहाना कलाम है। इसमें अगर अल्लाह ताला इस तरह का जुमला बोलते जिस तरह का मैं बोलने लगा हूँ तो ये खुदा का कलाम न रहता, कि अल्लाह ताला उसको मुआफ़ कर देंगे जिसको चाहेंगे अपने असूलों पर, और अल्लाह ताला उसको अजाब देंगे जिसको चाहेंगे अपने असूलों पर, तो ये एक शाहाना कलाम की शान ख़त्म हो जाती। इसलिए जुमला तो यही होगा खुदा की तरफ से, फ़यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसको चाहेगा माफ़ कर देगा जिसको चाहेगा सजा दे देगा। लेकिन इस शाहाना कलाम के पीछे जो हकीकत छुपी हुई है वो ये है कि अल्लाह ताला अपने जो असूल कुरान में बयान किए हैं उनके मुताबिक ही मग़फ़रत फरमाएंगे, उनके मुताबिक ही सजा देंगे। तो खुदा की मशीयत जो है वो गैर आदिलाना नहीं है, वो उसकी सिफात के ख़िलाफ़ नहीं है, ना अल्लाह की रहमत के ख़िलाफ़ कोई उसका मैयशा हो सकता है। तो वो रहमान और रहीम है, वो हकीम है, वो अज़ीज़ है, ये सारी सिफात की रोशनी में खुदा के फ़ैसले होंगे। तो वो अल्लाह की सिफात के ख़िलाफ़ तो नहीं होंगे, ज़ालिमाना नहीं होंगे, गैर मेहरबानी वाले नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो शाहाना शान से फरूतर होंगे, ऐसा नहीं है। उनकी शान उन फ़ैसलों की कल क़यामत वाले दिन, ये कुरान मजीद से ही मालूम होता है कि लोग हैरतज़दा रह जाएंगे कि अच्छा ये चीज़ें थी, इस तरह से मामला होने थे। तो हमारी तवक्को ही में नहीं है अभी भी। एक अगर साइंसदानों को देखें तो वो चूँकि क्रिश्चियन गॉड को मानते हैं, तो क्रिश्चियन गॉड की जो मैनिफेस्टेशन है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वजूद में होती है। तो क्रिश्चियंस को ये अंदाज़ा नहीं है कि असल खुदा कैसा है, चुनाचे उनके लिए ये मानना बड़ा मुश्किल है कि अच्छा ये सब कुछ अल्लाह ने किया हुआ है, ये बारीक बीनियाँ और ये पता नहीं छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल और इतना बड़ा सिस्टम और इतनी बड़ी वसी कायनात, ये एक हस्ती बना सकती। तो हमारे लिए तो कुरान मजीद ने, शुक्र है कि हमारे पास कुरान मजीद है कि जिसमें अल्लाह ताला का वो तारुफ कराया गया है कि वो लतीफ़ व ख़बीर है, वो हर काम कर सकने वाला है। तो इसलिए हमारे लिए ये अचंभे की बात नहीं, बल्कि ये ऐसे लगता है कि ये तो अल्लाह के लिए ऐसे कलमा कुन कहेंगे तो हो जाएगा। तो हमारा जो खुदा का तसव्वुर है उसमें ये सारी कायनात पूरी साइंसी हकीकतों के साथ बनाई जा सकती है, खुदा बना सकते हैं। लेकिन उनके यहाँ जो खुदा का तसव्वुर चला रहा था उसमें, अब जो जदीद क्रिश्चियंस हैं जो साइंस के बाद भी अल्लाह को मान रहे हैं, उनके यहाँ ये डेवलपमेंट हो रही है कि वो खुदा, एक बरतर खुदा का तसव्वुर अपने यहाँ रखते हैं। तो ये जो तसव्वुर है खुदा का कि वो बादशाह कायनात है, हर चीज़ उसके कंट्रोल में है, वो अज़ीज़ है, गफूर है, रहमान है, उसी ने सब कुछ करना है। तो फ़यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। ये बहुत दिलचस्प जुमला है यहाँ इस मौके पर, कुरान मजीद में बहुत दफ़ा आया है कि अल्लाह ताला हर काम पर कुदरत रखते हैं। कुदरत रखने के दो पहलू होते हैं, एक बना लेना और एक उनके ऊपर कंट्रोल रखना, एक बना लेना और एक कंट्रोल रखना। ये दोनों मानी कदीर के अंदर होते हैं कि मैं कादिर हूँ कि पानी भर के उठा कर ले आऊँ, तो सलाहियत को बयान कर रहा है, और मैं कादिर हूँ कि इस पानी को बाल्टी में भर लूँ, या कादिर हूँ इसको कि मैं इसको कंट्रोल कर सकूँ, अपनी मर्ज़ी से इसको इस्तेमाल करूँ, जब पीना है पी लूँ, जब गिराना है गिरा दूँ। तो ये सारा कुछ इसके अंदर शामिल होता है। अब यहाँ जो जिस पहलू से आया वो फ़यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा के पहलू से आया है कि यूँ ख्याल ना करना कि खुदा की गिरफ्त से निकल जाओगे। अगर तुम झूठी गवाहियाँ देकर आए, तुम्हारा दिल गुनाहगार हुआ, ज़मीर के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार के आए, तो पकड़े जाओगे, फिर कोई हाथ नहीं रोक सकेगा। तो फिरौन जैसा बाजबरूद बादशाह भी खुदा के आगे कुछ नहीं कर सकेगा, बल्कि सूरह फजर वगैरह में जाकर आगे बयान किया है कि क़यामत वाले दिन सारी मखलूकात, सारे इंसान इकट्ठे होंगे, बाबा आदम से लेकर आखिरी इंसान तक, यानी इस वक्त भी 7 अरब के करीब हैं हम, तो अब अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक कितने लोग होंगे, फ़र्ज़ कर लीजिए 100 अरब लोग, 100 अरब लोग मैदान हशर में इकट्ठे होंगे। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि अच्छा अब तुम इकट्ठे हो गए हो, मैंने तुम्हें भी जमा कर दिया, तुम्हारे पहलों को भी, अब मेरे ख़िलाफ़ कोई साजिश करना चाहते हो तो कर लो, तो कर सकेंगे? यानी 100 अरब लोग भी एक कलमा कुन से ख़त्म हो जाएंगे, कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो ये सूरत हाल है, जिस खुदा की ये सूरत हाल है, फरमाया कि उससे तुम कहाँ भाग कर जाओगे, क्या कर सकोगे, कुछ भी नहीं। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है, माफ़ करने पर भी, अजाब देने पर भी। कोई फिरौन भी उसके हाथ से बच नहीं सकेगा, और कोई फ़कीर भी उसकी नेमतों से महरूम नहीं रहेगा, उसकी शफ़क़तों से महरूम। कोई बेनवा आदमी, मेरे जैसा कमज़ोर आदमी भी जिसका कोई नहीं सुनता, उसकी भी सुनी जाएगी, और जिसकी सारे सुन के डर जाते हैं आज, उसको भी सज़ा हो जाएगी, कोई उसको खुदा के हाथ को रोक नहीं सकेगा। ये इस खुदा से हमारा मामला है। ये जहाँ पर बात पहुँचाई है पीछे से जो चली आ रही थी, शरीयत के अहकाम आ गए थे। आप लोगों को याद होगा कि इलाहुकुम इलाहुन वाहिद से ये सिलसिला शुरू हुआ था कि शरीयत देने का हक़ सिर्फ एक ही हस्ती को है, वो इलाह वाहिद है, और उस हस्ती के लिहाज से फिर कवानीन दिए गए थे। और ये तमाम के तमाम कवानीन वो थे जिसमें यहूद को या गलती लगी हुई थी, या उन्होंने नाइंसाफ़ी बरत रखी थी, या शरीयत में इसरो गलाल आ गया था, उसको ख़त्म कर दिया गया, सही शरीयत पर कायम कर दिया गया। तो यूँ समझिए कि जो यहूद के साथ मामला था अहले किताब में से, उसको एक इंजाम तक पहुंचा दिया गया है। और ये आयत उनके लिए नहायत तकलीफ़ दे है, ये जो भी हमने पढ़ी है कि जो तुम ज़ाहिर करोगे, तुम जो तुम्हारे दिलों में है और जो तुम दिलों में छुपाओगे। यहूद ये ख्याल करते थे कि जब तक हम बोलते नहीं हैं अल्लाह ताला जानते नहीं, ये वो समझते थे। यहाँ ये आयत उनके लिए बहुत ही तकलीफ़ दे होगी। और पिछला जो सारा मज़मून यहाँ तक पहुँचा है उसमें ये बात वाज़े हो रही है, अगली जो दुआ अब हम शुरू करने वाले हैं सूरह अल-बकरा की, इस दुआ से भी अंदाज़ा होगा कि यहूद के यहाँ कानून की या फिक्र की हमारी ज़ुबान में कह लीजिए इतना ज़्यादा रिचाव था कि वो ईमान से महरूम हो चुके हुए थे। और इस वक्त फुकहा के परवरदा उम्मत इसी हालत में है, हमारी उम्मत भी, यानी हम फिका के ऊपर अमल करने में इतने होशियार इतने तेज़ हैं कि छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखेंगे, लेकिन ईमान से महरूम है, ईमान से महरूम है। हज़रत ईसा के वो अल्फाज बहुत अहम हैं यहूद के उलमा के बारे में कि ये सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें हैं। मतलब क्या कि अंदर गंद भरा हुआ है, गल सड़ गए हैं, लेकिन अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, शरीयत के मुताबिक नहाए धोए हैं, सुरमा लगाया हुआ है, दांत साफ किए हुए हैं, कुल्ली की हुई है, लेकिन अंदर तअफ़ुन भरा हुआ, अंदर तअफ़ुन भरा हुआ है। कुछ हमारी भी हालत इससे बेहतर नहीं है, हमारे यहाँ भी ज़ाहरी चीज़ें बहुत हैं। आप कॉलर पहन लें आप काफिर हो जाएंगे, आपके टखने ऊंचे हो जाएं आप दोस्ती हो जाएंगे, तो ये सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन बेईमानी की हदें पार कर जाएंगे, झूठ बोलने की हदें, सौदा पूरा तोलना ही नहीं है, चुगली छोड़नी नहीं है, झूठ से बाज आना ही नहीं है, लेकिन ज़ाहरी तौर पर आपको एक अजूबा सा इंसान बना देंगे, बाकी अंदर गंद भरा हुआ है। ये जो वो जगह है जहाँ पर अल्लाह ताला ने पहुँचाया है यहूद को पूरी दावत के साथ कि तुम्हारा ईमान ईमान नहीं है, तुम ज़ाहरी फिका पर भी अमल करते रहते हो, हकीकत में तुम्हारी सूरत हाल क्या है कि आसिमुन कल्ब हो। अब आगे जो दुआ सिखाई है और जो ईमानियात का जिक्र हुआ है उससे आपको मज़ीद वाज़े हो जाएगा कि इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा तैयार हुई सूरह बकरा के नज़ूल के वक्त, उसका और यहूद का कितना फ़र्क था। फरमाया आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मोमिनून, ईमान ले आए अल्लाह के रसूल जो उनकी तरफ नाजिल किया गया उनकी रब की तरफ से, और अहले ईमान भी ईमान ले आए। अब यूँ समझिए कि ये जुमले बोलकर यहूद को सुनाना पेश नज़र है, उनको एक आखिरी दावत देने का प्रोग्राम है, सुनाकर दावत देना, सुनाया क्यों जा रहा है कि इन नफीस लोगों में शामिल होना चाहते हो तो आ जाओ, इन बाबरकत लोगों में शामिल होना चाहते हो तो आ जाओ, लेकिन साथ ही आईना भी है कि वो इसके बिल्कुल बरक्स। तो ईमान ले आए अल्लाह के रसूल जो उनकी तरफ नाजिल किया गया, और मोमिनून भी ईमान ले आए, कुल्लुन इनमें से हर एक यानी रसूल भी और मोमिनून भी क्या ईमान ले आए, आमना बिल्लाह इन्होंने अल्लाह को मान लिया पूरी तरह से, व मलाइकाते ही और अल्लाह के फरिश्तों को भी मान लिया। पीछे वाज़े रहना चाहिए अल्लाह पर ईमान की अल्लाह ने नफ़ी कर दी थी सूरह अल-बकरा के आगाज़ में, उन्होंने कहा था कि हम अल्लाह और आखरत पर ईमान रखते हैं तो अल्लाह वमा हुम बिमुमिनीन, याद रहना चाहिए। मलाइकाते पीछे गुजर चुका है कि मीकाईल और जिब्राइल के दुश्मन हो गए थे, व कुतुबे ही अल्लाह की किताबों में से एक ग्रुप इंजील को नहीं मान रहा था, अब ये दोनों ग्रुप कुरान को नहीं मान रहे हैं। तो फरमाया कि इनमें से हर एक अल्लाह पर ईमान ले आया है, उसके फरिश्तों पर ईमान ले आया है, उसकी किताबों पर ईमान ले आया, उसके रसूलों पर ईमान ले आया है। और आगे फरमाया ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिह, ये ईमान लाने में किसी रसूल के बीच में फ़र्क नहीं करते हैं। तो यहूद ने क्या किया, दो रसूलों में फ़र्क कर दिया, और नसारा ने क्या किया, एक रसूल में फ़र्क कर दिया कि साबित हो गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, माना नहीं है। यहूद पर साबित हो गया था कि ईसा अल्लाह के रसूल है, माने नहीं, तो उसको बिल्कुल नुमाया कर दिया। لا نفرق بین احد من رسلہ, کہ کسی رسول میں ہم فرق نہیں کرتے, سب پر ایمان لاتے ہیں. یہ بھی بات نوٹ کرنے کی ہے کہ تھرڈ پرسن کے سیگے سے, غائب کے سیگے سے متکلم جمع کا سیگا آ گیا ہے. پہلے یہ تھا کہ ان میں سے ہر ایک ایمان لایا ہے, اور جملہ آ گیا کہ ہم فرق نہیں کرتے. گویا یوں سمجھیے کہ ایک دل کی آواز ہے جو فوراً صادر کر دی گئی ہے. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, اور یہ مسلمان اور رسول یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بات سنی اور اطاعت اختیار کی. یہ بھی پیچھے یاد رہے کہ یہود کا جملہ نقل ہو چکا ہے, سمعنا وعصینا, ہم نے بات سن لی لیکن نافرمانی کی, پیچھے گزر چکی ہے. یہ ان کے ایمان کو گویا یوں سمجھیے کہ بالکل اس کا برعکس ایک پورا تصور سامنے رکھ کر یہ بتایا گیا ہے کہ معاملہ کتنا فرق ہے یہود کا اور مسلمانوں کا. آگے فرمایا غفرانک. غفرانک دو معنی میں عربی زبان میں آتا ہے دعاؤں کے اندر. ایک اس معنی میں آتا ہے کہ مغفرت فرمائیے, یعنی ہمیں معاف کر دیجیے. دوسرے اس معنی میں آتا ہے کہ ہمارا معاملہ آسان کیجیے گا, ہمارا معاملہ آسان کیجیے گا, مشکل میں نہ ڈالیے گا. یہاں یہ دونوں مفاہیم اپنے اندر رکھتا ہے, کیونکہ آگے دونوں مفاہیم کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں معاف کیجیے گا, یعنی کوتاہیوں غلطیوں کو, اور دوسرا یہ کہ ہمارے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالیے گا. یہ غفرانہ کے اندر ہی دونوں چیزیں. غفرانہ کا ربنا و الیک المصیر, اے ہمارے رب ہمارے اوپر شفقت فرمائیے گا, ہم آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں. اگر کوئی آدمی اس دنیا کی حقیقت کو جانتا ہو تو سارے فلسفے, ساری علمی بحثیں, ساری کتابیں جو یہاں لائبریری میں پڑھی ہوئی ہیں, یہ غفرانہ کا ربنا و الیک المصیر کے مقابلے میں حقیر ہے. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے, کیونکہ دنیا جس طرف جا رہی ہے وہ یہی ہے, اس سے الگ کوئی حقیقت ہی کوئی نہیں. تو یہ جتنے بڑے بڑے فلسفی, جتنے بڑے بڑے سائنسدان آج خدا کا مذاق اڑا رہے ہیں, جب کل قیامت والے دن میدان حشر میں خدا کو دیکھیں گے تو کیا کر سکیں گے؟ اس وقت یہ جملہ اتنا بڑا نظر آئے گا, اتنا بڑا محسوس ہوگا کہ اوہو, اصل دانائی یہی تھی, اصل کرنے کا کام یہی تھا کہ ہم اس وقت مان لیتے ہیں. غفرانہ کا ربنا و الیک المصیر, اے اللہ آپ ہمارے اوپر شفقت کیجئے, معاف کر دیجئے ہمیں, ہم آپ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں اور کہیں نہیں جانے والے ہیں. دنیا کی حقیقت یہی ہے. تو یہ آیتیں پوری سورہ کا گویا ایک طرح سے نچوڑ بھی ہیں, اور ایمان کی وہ جو پیچھے یہود کے ہاں کوئی نشانی موجود نہیں تھی, اس کو کوٹ کوٹ کے یہاں بھر دیا گیا ہے کہ آدمی یہ ہوتا ہے, بندہ مومن یہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے اندر جو اصول ہیں دینی حقیقتوں کے, وہ بالکل جڑوں میں جا کر بیان کر دیے ہیں, گہرائی میں اتر کے. سمینا و آتانا دین کی حقیقت ہے, ہم نے بات سنی اور اطاعت کی, مان لی. کیوں؟ کیونکہ انسانی علوم کی دنیا یہ حقیقت بتاتی ہے کہ ہم حقیقتوں کو دریافت نہیں کر سکتے. فلسفیوں کی ہزاروں سال کی کاوش ہیں, سائنسدانوں کی اب سینکڑوں سال کی کاوش ہیں, چار صدیاں ہو گئی, حقیقت کی تلاش نہیں کر سکے. ٹامک ٹوئیاں ہر جگہ پہ بند دروازے ملتے ہیں, ہر جگہ پہ کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے. تو پھر ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ رہ جاتا ہے, اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ خالق کائنات کچھ حقیقت بتا دے. بس جب خالق کائنات کی طرف سے حقیقت واضح کی جائے تو کیا ہوگا؟ سمینا و آتانا کے سوا ہو کیا سکتا؟ یعنی یہ کوئی بے عقلی کا رویہ نہیں ہے, یہ نہایت وہ حقیقت پرستانہ رویہ ہے کہ جو اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں, کوئی چارہ نہیں. یعنی اگر مثال کے طور پر ایک گفتگو ہو رہی ہو, میں کہوں کہ اس نے چوری کی ہے, دوسرا کہہ رہا نہیں اس نے چوری کی, اور بحث ہو رہی ہے چور کون ہے, اور آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد اوپر سے آسمان سے خدا کی طرف سے فرمان آ جائے کہ چور یہ ہے, تو کیا ہوگا؟ اس کے سوا کیا چارہ رہ جائے گا؟ سمینا و آتانا. سیدہ عائشہ پہ تہمت لگی, اگر ان پر لگی تو کیا ہوا؟ جب آیتیں اتر گئیں سب ختم ہو گئے. تو سمینا و آتانا کے سوا چارہ کیا ہے؟ اس میں یہ بحثیں نہیں ہوتی ہیں کہ جی مجھے سمجھائیے کیا ہو گیا, قیامت آپ نے بنائی کیوں تھی, مجھے پوچھا کیوں نہیں آپ نے قیامت بنانے سے پہلے, نہیں یہ بحثیں نہیں ہو سکتی. वहाँ बस इतनी बहस होगी कि खुदा की कलाम है कि नहीं है, बस ये बहस तो हो सकती है कि ये खुदा का कलाम है कि नहीं। लेकिन जब यकीन हो जाए कि ये खुदा का कलाम है, तो फिर कालू समेना व आताना के अलावा कोई हकीकत नहीं है। सारे फलसफी भौचके रह जाएंगे, मुंह खुले के खुले रह जाएंगे क्यामत वाले दिन, जो आज खुदा का इनकार कर रहे हैं और आखिरत का इनकार कर रहे हैं। तो ये कालू व कालू समेना व आताना, और उसके बाद कुफराना का रब्बना व इलैकल मसीर, ये मार्फत का इंतहाई बड़ा जुमला है। कहने को सादा सा है, कहने को सादा सा है, लेकिन दुनिया की मार्फत का सबसे बड़ा जुमला है, सबसे बड़ा अंबिया की दावत का चोटी है, जो उनकी भी आखिरी बात है कि ऐ रब हमने आपकी बात सुनी और मान ली, और तू हमारे ऊपर मेहरबानी फरमा, मग़फ़रत फरमा, शफ़क़त फरमाए हमारे रब, क्योंकि हम आप ही की तरफ वापस आने वाले हैं। दुनिया की इल्मी हकीकतों में सबसे बड़ी हकीकत, अंबिया की दावत में सबसे बड़ी दावत, और सबसे बेहतरीन रवैया। यहूद इसी रवैये से महरूम थे, यहूद इसी रवैये से महरूम थे, और आज की हमारी उम्मत भी इसी रवैये से महरूम है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अंदर इन चीज़ों का पूरी तरह से शऊर बेदार करें कि दुनिया की हकीकत क्या है, इसका अंजाम क्या होना है, और इस हकीकत के बारे में इस कायनात के खालिक ने क्या पैगाम दिया है, ये लाजमन समझना चाहिए। अगर आपको ये मालूम नहीं है तो दुनिया का हर दरवाज़ा खटखटा कर मालूम कीजिए। कुरान मजीद पर इत्मीनान नहीं है तो इस इत्मीनान को पैदा करने की कोशिश करें कि अल्लाह का पैगाम कहीं आया हुआ है, उसने कोई हकीकत हमें बता रखी है, ये ज़रूर मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए। और इस बात को समझ लेना चाहिए हर समझदार आदमी को कि इंसान के पास ना वो ज़राए हैं, ना वो कुव्वतें हैं, ना उसके पास फैसला कुन सलाहियतें हैं कि वो इस दुनिया की हकीकत के बारे में फ़ैसला दे सके। क्यों? क्योंकि बड़े से बड़ा इंसान, आज का जो हमारा इल्म है ये सुकरात और अफलातून के ज़माने के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इल्म है, बहुत ज़्यादा। उस इल्म के बावजूद कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने सारी चीज़ों की हकीकत जान ली है, नहीं कर सकता। सारी चीज़ों की क्या, एक एटम की हकीकत अभी तक हम नहीं बता सकते। हम जिस जगह जाके फंस गए, फंसे बैठे, अगले 50-60 साल हो गए, आइंस्टाइन के ज़माने में क्वांटम मैकेनिक्स का मसला पैदा हो गया था, अभी तक हल नहीं हुआ। तो क्यों हल नहीं हुआ? क्योंकि हमारी बसात से बाहर है, हमारे बस में नहीं है कि हम हकीकतों को पर्दों के पीछे जाकर, गैब के पर्दों में झांक कर देख सकें, ये हमारे बस से बाहर है। और दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं होगा, पैदा ही नहीं हो सकता कि जो ये कहे कि मुझे सारा इल्म मेरे पास। इंसानों के पास अब दर्जा बंदी हो गई, ये साइंस के हैं, ये फिज़िक्स के हैं, ये बायोलॉजी के हैं, ये फलां के हैं, फलां के हैं। तो कायनात की हकीकत वो हस्ती तो बता सकती है जिसके पास पूरा इल्म हो। कोई एक इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जो पूरा इल्म रखता हो। तो इसलिए वो इस कायनात की हकीकत के बारे में कोई फैसला कुन बात भी नहीं बता सकता। तो इसलिए हमारे बस से बाहर है कि हम इस कायनात की उन हकीकतों को जान सकें जिन हकीकतों पर अल्लाह ताला ने इसको तख्लीक किया है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।